पाश्चात्य जगत में एक लेखिका ने एक किताब लिखी है। उस लेखिका की उम्र लगभग 70 वर्ष की है। उसने अपने अनुभव लिखे हैं। रेचल कार्सन उसका नाम और किताब का नाम है सेंस ऑफ वंडर। उसने लिखा है कि मुझे इच्छा थी फिर से छोटा बच्चा बनूं, तो उसने दोस्ती की उसमें एक 3 साल के बच्चे के साथ, और उसकी वो दोस्ती जो चली वो 2 साल तक, जब तक वो बच्चा 5 साल का ना हो जाए तब तक। एक छोटे से बच्चे का दोस्त बनना एक होता है, मां बनना एक होता है, बाप बनना एक होता है, गुरु टीचर या जो भी है इस तरह के संबंध। पर उसका ये संकल्प था कि जो कुछ वो छोटा बच्चा करता है वो सब कुछ मैं अनुभव करूं। अगर वो खेलता है तो मैं भी उसी तरह खेलूं। वो लिखती है अपने अनुभव में, जीवन में पहली बार मैंने ऐसा अनुभव किया उन 2 सालों में। उसको कोई गाइड नहीं किया, उसको कोई सिखाया नहीं कुछ उस बच्चे को, परंतु जो कुछ वो करता था वैसे ही वो करती थी। वो अगर समुद्र पर जाता है तो वो भी समुद्र पर, वो अगर पत्थर बीनता है तो वो भी पत्थर बीनती थी, वो अगर पानी से खेलता था तो वो भी पानी से खेलती थी, वो अगर आधी रात को उड़ जाता था तो वो भी आधी रात को उड़ जाती थी। जो कुछ उस बच्चे की चेतना में हुआ उसने कहा कि मैंने भी वह सब कुछ अनुभव करने का प्रयत्न किया, और उस 2 साल में मैं ये भूल ही गई कि मेरी उम्र भी जो है वो 70 साल की है। जीवन में पहली बार उस लेखिका ने लिखा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जीवन की इस दौड़ में कुछ तो खो गया था, कुछ तो अनुभव करने का रह सा गया था। और उन 2 सालों में उस बच्चे के साथ उस बच्चे जैसा ही बनकर, उस बच्चे जैसे ही संस्कार धारण कर, उस बच्चे जैसे ही बोलकर, वही आश्चर्य का भाव, जैसे छोटा बच्चा आश्चर्यचकित होता है समुद्र को देखकर, सीप को देखकर, लहरों को देखकर, फूलों को देखकर, तितलियों को देखकर, उसी आश्चर्य के भाव से उसने अपने आप को भरा जैसे पहले कभी देखा ही नहीं है इस जगत को। तो लिखती है कि वही बचपना लौट आया और ऐसा आनंद हुआ इस जीवन में जैसा कभी नहीं हुआ था। पहली बार, सेंस ऑफ वंडर उस किताब का नाम है। हम जब ये पढ़ रहे थे और सोच रहे थे इसके बारे में, तो हम ये सोच रहे थे कि अगर बाबा के समीपता का अनुभव करना है, एक है सर्व संबंधों से अनुभव करना, वो एक बात, दूसरा है ऐसे अनुभव करना जैसे वो है वैसे ही हम हो जाए, जो उसका रूप है वैसे ही हमारा रूप हो जाए, जो उसकी भावनाएं हैं वो हमारी भावनाएं हो जाए, जो उसके संस्कार है, जो उसके बोल है, जो उसके कर्तव्य है वो सब हमारा हो जाए। अगर हम भी उसी भाव में जीवन के कुछ पल बिताए तो शायद इस जीवन में हम कहीं जो खो गए हैं, हमारा जो एक संपूर्ण पवित्र स्वरूप है उससे हम कहीं दूर हो गए। हमारा एक जो अव्यक्त स्वरूप है, हमारा एक जो बाप समान स्वरूप है, हमारा एक जो रूप है बिंदी का, वो भी बिंदी और हम भी बिंदी। हमारा एक जो रूप है परम धाम का, जहां हम अशरीरी है, उसी अवस्था में टिक जाना, लंबा समय रहना और वो सभी चीजों का अनुभव करना, तो हमारी चेतना में कैसा परिवर्तन आ जाएगा, हमारे मन के भाव कैसे हो जाएंगे, हमारे बोल कैसे हो जाएंगे, हमारी चलन कैसे हो जाएगी। तो आज आज से, आज की तारीख कौन सी है? 10 तारीख। और बाबा आ रहे हैं कब? 16 तारीख को। आज की शाम से लेकर तो आने वाली 16 तारीख की शाम तक कितने दिन? 36 दिन की वो शाम। तो ये जो 36 डेज है, ये जो 36 दिन है, इससे पहले कि हम भगवान के सामने जाकर बैठे, हमें वो सब कुछ याद कर लेना है जो उसने हमें कहकर गए हैं पिछले सीजन में। तो पिछले सीजन की टोटल 8 मुरलियां चली, जिसमें बाबा ने हमें बहुत सारे छोटे छोटे होमवर्क्स दिए हैं, छोटे छोटे विषयों पर मुरली चलाई है। तो आज की इस क्लास में हम, क्योंकि हमारे पास 36 दिन है, हम ऐसा करते हैं कि इन 36 दिनों को 6-6 दिनों के 6 भाग में विभाजित करते हैं, आज से लेकर तो अगले आने वाले शनिवार की शाम तक, फिर वहां से अगले शनिवार की शाम तक। तो ऐसी 6 बातें ले लो। तो बाबा ने पिछले सीजन की जो मुरलिया है, उसमें बहुत सारी गुह्य बातें हमें बताई है। आज से लेकर तो अगले शनिवार तक पहले 6 दिन एक सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, वो है पढ़ाई। कौन सा सब्जेक्ट? पढ़ाई। तो इस पढ़ाई के विषय में बाबा ने लास्ट सीजन में बहुत अच्छी मुरलियां चलाई है, और सबसे अच्छी मुरली जो चली थी वो थी कब की? पढ़ाई के बारे में 18 जनवरी की। अव्यक्त मास था, बाबा ने ब्रह्मा बाबा को की अव्यक्त स्थिति का कोई वर्णन नहीं है उसमें, ना ही बाप समान बनने की कोई बात उसमें है। सारी की सारी मुरली किस पर है? पढ़ाई पर। तो आज से लेकर तो अगले 6 दिन हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा पढ़ाई। उस मुरली में बाबा ने कहा है पढ़ाई का शौक होना चाहिए, पढ़ाई पर अटेंशन होना चाहिए। चेक करो ऐसी कौन सी आदत है जो हमें पढ़ाई से दूर ले जाती है। ऐसे हम कहां खोए हुए हैं, ऐसी कौन सी आदत बना ली है कि जिस आदत ने हमें पढ़ाई के लिए हमें जितना समय देना चाहिए था उतना हम नहीं दे पा रहे। तो सबसे पहला इस 6 दिन में सारा के सारा ध्यान, सारा के सारा अटेंशन, बाबा ने कहा ये आदत बना लो, शौक अटेंशन हैबिट पढ़ाई की। तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है और किस विधि से पढ़ाता है? किस विधि से पढ़ाता है कौन बताएगा? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, किस विधि से पढ़ाते हैं बाबा? ऐसे पढ़ाते हैं जैसे कि बुद्धि में क्या हो जाती है? छपाई हो जाती है, भूलता नहीं है। भगवान को देखो कितना नशा है, किस बात का? कि मैं जो पढ़ाता हूं वो छप जाता है, और बच्चे कहते हैं कि वी डोंट थिंक सो। क्या कहते हैं? हमें नहीं लगता भगवान को नशा है कि वो जो भी पढ़ाता है वो बच्चों की बुद्धि में छप जाता है। ऐसी पढ़ाई, सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे छोटा बच्चा हो, सभी अपने आप को क्या समझते हो? गॉडली स्टूडेंट समझते हो। ये भाव कभी भी खो ना जाए कि हम विद्यार्थी हैं, हमें सीखना है। इस ज्ञान को अभी तक हमने पूरा नहीं समझा है। बाबा ने कहा है, मैंने तुम्हें अब तक जितना पढ़ाया है, जो भी ज्ञान दिया है, एक बूंद मात्र है। इसके लिए ये नहीं समझ लेना शायद हमने सूचनाओं को ही ज्ञान समझ लिया है। ज्ञान अथाह है और परम ज्ञानी की तो ये पहचान है कि वो कहता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। जो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं, वहां घमंड और अभिमान आ सकता है। ज्ञान की अभिप्सा, ज्ञान की प्यास निरंतर रहे। बाबा के एक एक महावाक्यों में एक डीप साइकोलॉजी, एक गुह्यतम मनोविज्ञान छिपा हुआ है। और हमने एडमिशन भी तो कितनी लेट ली, स्कूल तो कब से चालू हो चुकी है। क्या हमने वो सारी मुरलियां पढ़ ली? केवल पढ़ने से क्या होगा, समझ ली? एक एक पॉइंट की गहराई में गए, एक एक पॉइंट को धारण किया, समझा, मनन किया, अध्ययन किया? शायद नहीं। 69 से लेकर तो अब तक की सारी मुरलियां, कितना सारा होमवर्क बाकी है, एडमिशन कितनी लेट ली है इस कॉलेज में हमने। निरंतर एक भाव रहना चाहिए कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, इस पढ़ाई को पूर्ण ध्यान से पढ़ना है। उस मुरली में बाबा ने कहा था, एक दिन भी मिस, एक क्लास भी मिस ना हो। बाबा ने रेगुलर के बारे में भी कहा था कि भल कोई एक दिन भी आए तो भी उसको रेगुलर कहा जाएगा, परंतु इसमें ही ठहर नहीं जाना। केवल मुरली क्लास में गए, मुरली क्लास में बैठे, मुरली की पॉइंट्स लिख ली अपनी डायरी में और सोच लिया कि हमने क्लास अटेंड कर ली। किसी मुरली में बाबा ने कहा है, ये है पुरानी चाल, इससे नहीं होगा, समझना होगा, उसकी गहराई में जाना होगा। जब तक वो पॉइंट, वो बात और हमारे विचार एक ना हो जाए, जब तक वो ज्ञान की बात हमारे विचारों में घुल मिल ना जाए, हमारे आचरण में ना आ जाए, तब तक तो अगले 6 दिन किस पर ध्यान देना है? संपूर्ण ध्यान पढ़ाई पर। उसमें भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। एक है मुरली सुनना, फिर है मुरली पढ़ना, और तीसरा है उस पर मनन करना। पढ़ सब रहे हैं, सुन सब रहे हैं, पर तीसरा जो आयाम है वो है चिंतन, वो है मनन। रोज अपने आप को एक टॉपिक मुरली से निकालकर चिंतन के लिए देना। जैसे आज की मुरली है, वरदान में बाबा ने कहा न्यारापन कैसे होना चाहिए। बाहरी नहीं, दिखावटी नहीं, कॉस्मेटिक न्यारापन नहीं, सुपरफिशियल न्यारापन नहीं, अंदर से मन का लगाव ना हो। जैसे ये टॉपिक है, अब इस टॉपिक को यहां से उठाओ, जो लिख सकते हैं वो लिखे, इस टॉपिक का विस्तार करना। जब तक ये कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक वो जो पॉइंट है हमने डायरी में तो नोट कर ली, वो डायरी में ही रह जाएगी। उसका मनन करना, और संपूर्ण सबसे अच्छा जो समय है मनन करने का, वो है अमृत वेले के बाद का समय। इसके लिए अमृत वेले के बाद सोना अर्थात की कमाई चट करना, यही समय है स्वयं को श्रेष्ठ चिंतन देने का, श्रेष्ठ मनन करने का, श्रेष्ठ अध्ययन करने का, पठन पाठन करने का। तो ये समय हमारा नींद में ना जाए, ये समय हमारा कोई और बात करने में नहीं जाए, ये समय मनन में जाए, लिखने में जाए, एक टॉपिक लेना और उसका विस्तार करना। कोई कहते हैं कि हम लिख नहीं पाते, टॉपिक से लिखो, पॉइंट से लिखो, 1 2 3 4 पॉइंट, इस तरह से, जैसे आज की मुरली का वरदान में है लगाओ मुक्त। लगाओ क्या है, इसकी 5 पॉइंट्स लिखो। लगाओ क्यों है, उसकी 5 पॉइंट्स लिखो। लगाओ कहां कहां व्यक्त हो रहा है जीवन में, उसकी 5 पॉइंट्स लिखो। और लगाओ से मुक्त कैसे हो, उसकी 5 पॉइंट्स लिखो। ये लिखना ही चिंतन होगा, इससे तो ही ये बात समझ में आएगी। बाबा ने कहा न्यारापन वही सहजयोगी बन सकता है। वो न्यारापन अर्थात क्या, न्यारापन के लिए बाबा ने अब तक हमें जो याद है कौन कौन से महावाक्य कहे हैं, तो ये है पढ़ाई। तो सर्वश्रेष्ठ समय है सुबह अमृत वेले के बाद का संपूर्ण। दूसरा, किस जगह करें, तो इस ज्ञान सरोवर के इस प्रांगण में इतना सुंदर वातावरण है, प्रकृति का इतना अद्भुत सहयोग है, इस सहयोग का हमें लाभ लेना है, उसके सानिध्य में बैठकर ज्ञान का मनन करना और चिंतन करना। क्यों करना, क्योंकि जब तक हम मनन नहीं करेंगे तब तक वो पॉइंट हमारी अपनी नहीं बनेगी। चाहे वो पॉइंट हमने हजारों क्लासेस में सुनी है, परंतु वो किसी और की है, हमारी नहीं है। हमारी अपनी बनाने के लिए हमें उसके ऊपर सोचना होगा। जो लोग नहीं लिखते हैं वो केवल मन में उसका चिंतन करें, चलते फिरते वॉक करते करते ही एक टॉपिक लेकर ही वॉक पर निकले, ताकि जब तक हम आए बहुत सारी पॉइंट्स हमारे मन में हो। तो अगले 6 दिन क्या करना है, सारा टेंशन पढ़ाई पर। हर एक दिन की मुरली से ऐसा कोई 2-3 महावाक्य निकाल लो जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, हमारे लिए पावरफुल है, जो हमने शायद पहली बार ही सुने हैं, या फिर अब तक बहुत बार सुने हैं पर आज जिस ढंग से सुने वैसे कभी नहीं सुने थे, आज एकदम से जैसे बुद्धि में प्रकाश आ गया सुनते ही, या फिर आज जिस व्यक्ति ने सुनाया, जिस आत्मा ने इस ढंग से सुनाया, ऐसे उदाहरणों के साथ सुनाया कि वो सुनते ही इतने सालों का जो अंधकार था मन में अचानक विलीन हो गया। ऐसा नहीं कि वो पॉइंट हमने सुना नहीं है, सुना है, पर आज मन की जिस अवस्था में सुना वो मन की अवस्था ही कुछ और थी, क्योंकि सुनने से पहले हमने मनन भी किया था। हमारा जो अमृत वेला था वो शक्तिशाली था, और उसके बाद का समय भी शक्तिशाली था। ये 2 चीजें हुई थी, उसके बाद मुरली सुनी गई थी, उसके इस कारण से वो दिव्य प्रकाश जैसे बुद्धि में आ जाएगा। तो सबसे पहली चीज जो करनी है 6 दिन मुरली मुरली मुरली। अगर सारी मुरली में पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं तो केवल वरदान को ले लो, उस वरदान में टॉपिक क्या है और करना क्या है, उसको वहां से उठाना, उसका विस्तार करना। और एक बात, अगर कोई साथी सहयोगी मिले और जिन्हें पुरुषार्थ में बहुत रुचि है, इंटरेस्ट है, प्रेम है, उनके साथ वो डिस्कस करे। ब्राह्मणों के बहुत सारे कर्तव्य बाबा ने गिनाए हैं कभी, वाह रे मैं ब्राह्मण आत्मा किताब है एक, जिसमें ब्राह्मणों के कर्तव्य में अंतिम कर्तव्य जो सुनाया है वो है ज्ञान की चर्चा करना। ये ब्राह्मणों का कर्तव्य है। हमने तो सुन लिया, हमने समझ लिया, परंतु चर्चा नहीं की, क्योंकि जब हम दूसरों को सुनाते हैं तो वो भी फिर कुछ सुनाएगा, तो वो क्लियर होगा बहुत। तो सबसे पहला है अगले 6 दिन जो भी मुरली आती है उसमें से टॉपिक्स निकालना, चाहे एक दो टॉपिक निकालो और उसके ऊपर लिखना। अगर नहीं लिखते हैं तो मनन करना, चिंतन करना, विस्तार करना, चर्चा करना। तो पहला था पढ़ाई, पढ़ाई में अटेंशन, पढ़ाई में रुचि। स्टूडेंट और पढ़ाई में रुचि ना हो शोभता नहीं है, उसी मुरली के महावाक्य है बाबा के, ये शोभता नहीं है। तो एक दूसरा, अगले 6 दिन खुशी। पिछले सीजन की जो भी मुरलियां चली थी उसमें बाबा ने बार बार खुशी को याद किया है। खुशी जैसी खुराक नहीं, ये तो कहते ही है, पर उसमें कहा है बाबा ने, ये जैसे दवाई है, ये दवाई है तो बीमार नहीं। बड़े भाइयों से मुलाकात, अगर ये दवाई है तो बीमार नहीं। जितनी मुरलियां अगले 6 दिन चलेगी नेक्स्ट, उसमें से खुशी की पॉइंट्स कौन कौन सी है वो निकालना। ऐसी पॉइंट्स जो हमारे मन में खुशी भर दे, ऐसी वो कौन कौन सी पॉइंट्स है वो निकालना। जितनी खुशी की पॉइंट्स है, जहां जहां से वो आ जाए उनको वहां वहां से निकालना, और इसके ऊपर चिंतन करना है कि हमारी जो दिनचर्या है उसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारी खुशी को नष्ट करती है, समाप्त करती है। किसी के बोल, किसी का व्यवहार, किसी के संस्कार, किसी की आदतें, कौन सी वो बातें हैं जो हमारी खुशी को नष्ट करती है। और बाबा ने खुशी के बारे में जो कुछ कहा है वो दूसरों को सुनाने की बात नहीं है, मन ही मन रिवाइज करो, अंदर ही अंदर उन पॉइंट्स को रिवाइज करो। जैसे हम अभी निकले वॉक के लिए, एक टॉपिक हमने ले लिया खुशी, चलते 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 खुशी के ही बारे में केवल सोचना, जहां कहीं स्लोगन लिखे दिखे खुशी के बारे में क्या लिखा है वो पढ़ना। तो नेक्स्ट 6 दिन जो है करना हमको वो है खुशी के लिए, और जो भी मुरलियां चलेगी उसमें से वो पॉइंट्स निकालना, लिखना, मनन करना, अध्ययन करना, चर्चा करना, ये भी साथ साथ चालू रहे। खुशी एक जैसे कि आदत सी है, जैसे दुख एक आदत है, जो दुखी व्यक्ति है उसने आदत बना ली है, उसके सामने कितनी भी अच्छी अच्छी बातें आ जाए परंतु वो दुख ढूंढ ही लेगा उसमें से। ये दुख ढूंढने की या दुख को एब्जॉर्ब करने की आदत है, पेन एब्जॉर्प्शन, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, स्वयं स्वयं का ही शिकार करना। किसी ने कुछ कहा, कई सारे लोगों ने अच्छे शब्द कहे हमको, पर किसी एक व्यक्ति ने कुछ कहा उसको पकड़ लेना, उसके ऊपर दिन रात सोचना और स्वयं को दुखी करना, ये एक आदत है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना, स्वयं को नीच समझना, कम समझना, ये भी ना हो। हीनता, इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दुखी करना स्वयं को, ये एक आदत है। हमें एक बहुत अच्छा किसी ने चित्र भेजा था, उसमें दिखाया था एक हिरन है जो कि जवान है, जिसमें एक तीर चुभा हुआ है, एक तीर चुभा और घायल पड़ा हुआ है नीचे। दूसरा एक चित्र बाजू में है जो कि थोड़ा मैच्योर्ड है, थोड़ा बूढ़ा है, बहुत सारे तीर चुभे हुए फिर भी खड़ा हुआ है। पहला इतना सेंसिटिव है कि किसी ने कुछ कहा या बोला या शब्द या व्यवहार और दुखी और घायल। आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, अर्थात जीवन में सब कुछ सहन किया, परंतु फिर भी दुखी नहीं, उदास नहीं। वो बताते हैं एक साधु की कहानी, वो सारी उम्र भर अपने इतना खुश रहा, इतना खुश रहा, इतना खुश रहा, उसके जीवन में जैसे कभी दुख था ही नहीं, इतना वो खुश था। जब वो मरने को आया तो उसके सारे शिष्य दुखी होने लगे। उसने कहा बिल्कुल दुखी नहीं होना, पर वो जितना कहता था दुखी ना होना, वो सारे और दुखी होते थे। और फिर तो एक समय आया जैसे उसकी मृत्यु की घड़ी निकट आई, और दूर दूर से शिष्य उससे मिलने आने लगे, उसके अनुयायी, उसके भगत उससे मिलने आने लगे, और दुखी होने लगे। अब वो चाहता था कि कोई भी दुखी ना हो, मैं जब इस संसार से जाऊं तो ऐसे जाऊं कि बहुत खुशी खुशी से जाऊं और मेरी मृत्यु का भी किसी को दुख ना हो। तो वो कहता है, वो इतना समझाता है फिर भी वो लोग नहीं सुनते। तो वो एक शर्त रखता है कि मैं अभी बस जाने ही वाला हूं, मैं जब मरूंगा तो मेरे वस्त्र जो है वो मत निकालना, बस वस्त्रों सहित मुझे जलाना, वो एक शर्त रखता है। उसके शिष्य भगत कहते हैं ठीक है, उनको तो बहुत प्यार होता है क्योंकि बहुत ही प्यारा व्यक्ति होता है वो। उसकी मृत्यु होती है, कपड़ों सहित उसे चिता पर रखा जाता है और चिता को मुखाग्नि और आग दी जाती है, और जैसे ही आग के लपटे लगती है अचानक बहुत सारे फटाके जलने लगते हैं। उसने अपने शरीर के अंदर बहुत सारे फटाके जैसे कि बांध के रखे थे, और जैसे ही वो फटाके फूटने लगते हैं तो सब लोग एकदम हंसने लगते और कहते हैं देखो ये व्यक्ति जब जीवित था तब भी सबको हंसाया और जब मरा तब भी सबको हंसाते हुए मरा। खुशी एक ऐसी ही आदत है। हम क्यों दुखी हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि सभी ब्राह्मण बहुत खुश है? कहीं ना कहीं एक दुख है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति कंप्लेन का भाव है, कहीं ना कहीं किसी के प्रति सूक्ष्म घृणा है, सूक्ष्म नफरत है। किसी ने हमें शायद बहुत सताया है, किसी ने हमें शायद बहुत दुख दिया है, शायद कोई हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में बहुत बड़ा विघ्न है। और ऐसे जो लोग हैं वो आसपास के ही है, कोई दूर के नहीं। दूर के व्यक्तियों को तो हम रोज सकाज देते हैं जो दुखी है, अशांत है, अपवित्र है, पर क्या हम उन लोगों को सकाज देते हैं जो हमारे ही ग्रुप में है? बाबा ने कहा है ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकतु होंगे। तो क्यों हम दुखी हो जबकि ये हिसाब किताब है? क्यों हम समझे? अच्छा है ना चुकतु हो रहे हैं? तो दूसरा पॉइंट है खुशी। कंप्लीट 6 दिन बहुत सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, खुशी खुशी और खुशी, केवल एक विषय लेना और फिर उस दिन मुरली में जो भी आए उससे संबंधित वो सारा उसके साथ जोड़ दे जाना। ये भी एक अभ्यास है, ठीक है। अगले 6 दिन बाबा ने इस मुरली में मिलन की बहुत सारी बातें की थी। क्या क्या कहा था मिलन के बारे में 8 मुरलियों में? ये मिलन कैसा है? अलौकिक मिलन है, साधारण नहीं है, विचित्र मिलन है, न्यारा मिलन है, प्यारा मिलन है, वंडरफुल मिलन है, ऐसा मिलन है कि दिल में छप जाने वाला मिलन है, और अचानक की लॉटरी है। इस मिलन की वैल्यू बहुत है, अमूल्य मिलन है। और एक होमवर्क दिया है कि केवल अब नहीं, निरंतर इस मिलन को मनाते रहना, निरंतर बाबा के साथ हम किसी ना किसी रीति से जुड़े रहे। ऐसा कुछ करे कि ये जो तार है ये टूट ना जाए एकदम। ऐसा ना हो कि 9 बजे तार टूटी और सीधे फिर 5 बजे और 6 बजे ही जोड़ना पड़े। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी को भूले हुए हैं। अव्यक्त बाप दादा का गुलजार दादी के द्वारा एक बार संदेश आया था। सबसे पहली बार जब मुंबई में प्रदर्शनी हुई थी तो बाबा का संदेश आया था। बहुत अच्छी प्रदर्शनी हुई थी, बहुत सफल हुई थी। तो एक पेज का वो संदेश था जिसमें अव्यक्त बाप दादा ने कहा था कि बच्चों ने बहुत अच्छी सेवा की है, बाप दादा बहुत खुश है, बच्चों ने बहुत मिलकर सेवा की है, और बहुत सारी महिमा की बातें की थी। और लास्ट एक लाइन थी उसमें, परंतु बच्चे बाप को भूले हुए हैं, फुल स्टॉप। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसी को तो नहीं भूल गए, जिसके घर में रह रहे हैं उसी को तो नहीं भूल गए, जिसके यज्ञ से पालना हो रही है उसके यज्ञ को ही तो नहीं भूल गए। भूलना अर्थात वो स्मरण नहीं है बुद्धि में, केवल सेवाएं कर रहे। एक है जागरण की अवस्था, जागरण की अवस्था अर्थात ज्ञान का जिसमें मनन है, चिंतन है। दीप राज के बच्चे ऐसे चेतन दीपक हो। अभी अभी मुरली चली थी, अमर ज्योति, अखंड ज्योति, अविनाशी ज्योति, विश्व के दीपक हो तुम। ये जो दीपक है सदैव जलता रहे, उसके लिए निरंतर मनन की आवश्यकता है। एक सेकंड भी बेहोशी और गिरे, योग अर्थात होश की अवस्था, जागरण की अवस्था, आत्म अभिमानी स्थिति अर्थात संपूर्ण होश। हम गिरते कब है? जब बेहोश होते। अगर कोई व्यक्ति संपूर्ण जागृत अवस्था में रास्ते पे चल रहा है तो गिरेगा नहीं, गिरते तब है जब थोड़े मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो ज्ञान, उसके बाद में खुशी, और उसके बाद में ये मिलन। ये मिलन कैसा हो? निरंतर होता रहे, अलग अलग रीति से याद करते रहना है उसको, अलग अलग रीति से, अलग अलग संबंधों से, सर्व संबंध सर्व रूपों से। अभी अभी वरदान था, अलग अलग रीति से और अलग अलग संबंधों से, एक ही रीति से नहीं, अलग अलग रीति से याद करना और उसके प्यार का अनुभव करना। हमारी जो हमारा जो मिलन है क्या वो इतना निरंतर है? अगर हम भक्तों को ही देखें तो भक्तों का मिलन देखो कैसा था। एक बार एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और पूछते हैं कि भगवान को कैसे पाया जाए, जब को वो ईश्वरीय विरह की अवस्था में होते हैं, इतने आंसू बह रहे, आंसू बह रहे, कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, ऐसी विरह की अवस्था है उसमें वो डूबे हुए है, आंसू बह रहे हैं, पूरा बिस्तर भीगा हुआ है आंसुओं से, कृष्ण विरह में, कृष्ण प्रेम में। और वो व्यक्ति, संसारी व्यक्ति पूछता है कि भगवान को प्यार कैसे कहे। वो उनसे कहते, मेरी ये अवस्था देखकर अगर तुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे कहने के बाद क्या समझ में आएगा। क्या हमारी ऐसी अवस्था है? खींचने वाली याद, या फिर जबरदस्ती वाली, मजबूरी वाली याद है? उठना है, नियम बना हुआ है, इसके लिए याद करो। योग जैसे कर्म है, योग पूरा हुआ अभी चलो दूसरा कुछ करते हैं, अभी ये पूरा हुआ अभी चलो भोजन करते, अभी ये पूरा हुआ अभी चलो ये करते, क्यों ऐसा? हर एक कर्म ही जैसे योग हो जाए, ये अलग वो अलग ये अलग, ये हम ऐसे खंडित व्यक्तित्व क्यों है? सुबह हमारी बहुत अच्छी स्थिति है, कर्म योग में हम कुछ और है, शाम को हम कुछ और है, ये खंडित व्यक्तित्व क्यों? कहां बिखरे हुए हैं? एक करना है स्वयं को। उसके बाद भाग्य, अगले 6 दिन केवल भाग्य का चिंतन करना है। भाग्य के विषय में कौन कौन सी बातें आती है उसके विषय में सोचना है। रोज कुछ समय बैठकर अपने भाग्य का चिंतन करना, रोज। बाबा ने बहुत बार कहा है, भाग्य की लिस्ट निकालो, सम्मान की लिस्ट निकालो, वरदानों की लिस्ट निकालो, ये सारी लिस्ट निकालो। मन ही मन सोचना है कि मेरा क्या क्या भाग्य है, मुझे क्या क्या मिला है। तो भाग्य के बारे में रोज निकालना है, पर रोज नए नए भाग्य सोचो, कभी भोजन के विषय में, कभी यहाँ के संग के विषय में, यहाँ के सब बातों के विषय में, इस भूमि के विषय में। यहाँ आना कितना बड़ा भाग्य है। संसार में देखो कैसा विकारी और वासना युक्त वातावरण है, हवाओं में ही विकार है। एक एक मनुष्य के अंदर काम विकार ठूस ठूस कर भरा हुआ है। जहां देखो बस काम की आग लगी हुई है, और कुछ है ही नहीं संसार में, एक ही है चारों ओर। और यहां की आत्माएं देखो, यहां के वाइब्रेशंस देखो और संसार के वाइब्रेशंस देखो। यहां थोड़े समय भी आ जाना कितना बड़ा भाग्य है। परंतु ऐसा होता है कि लंबे समय जहां रहते हैं उस स्थान का महत्व भूल जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसे मधुबन का महत्व पता नहीं है, हरेक को पता है। एक और सूक्ष्म काम जो रोज करना है, शायद सभी करते भी होंगे, पर आप सबके लिए एक होमवर्क, रोज मन से चार धाम की यात्रा करनी है। क्या करना है? मन से चार धाम की यात्रा करनी है। यदि शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ में आ जाओ, यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना, यदि बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प हो तो बाबा के कमरे में आ जाना, यदि उदास हो जाओ तो बाप से रूरियान करने झोपड़ी में आ जाना। एक है सशरीर जाना, साकार में जाना, पर उससे भी अधिक शक्तिशाली है मन से चले जाना, मन से जाकर अनुभव करना। अभी अभी बैठे हैं, अभी अभी सोने से पहले जैसे बिस्तर पर लेट जाते हैं उस समय यह अभ्यास किया जाए। बिस्तर पर लेट चुके हैं, सोचो मैं पहुंचा शांति स्तंभ, वहां से हिस्ट्री हॉल, वहां से बाबा का कमरा, वहां से बाबा की कुटिया में, कुटिया में जाके गुड नाइट करके फिर आ जाना, फिर नींद करना। सबसे बेस्ट जो टाइम है योग करने का वो कौन सा है पता है? सबसे बेस्ट सोने से पहले भी नहीं, बाबा के कमरे वाला भी नहीं, जब बिस्तर पर लेट चुके हैं वो समय। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन अवचेतन मन, बीच में जैसे एक बैरियर है जिसको कहते हैं प्री कॉन्शियस। ये जो है ये सुबह खुलता है, सुबह खुलता है एकदम अमृत वेला, उठते ही आंख खुलते ही कुछ 5-10 मिनट, और रात को सोते समय। इस सोते समय अगर जो संकल्प, अंतिम संकल्प सोने का, वही उठने का प्रथम संकल्प होता है। यदि हम बात करते करते सो रहे हैं, फोन करते करते सो रहे, टीवी देखते देखते सो रहे, न्यूज़पेपर की न्यूज पढ़ते पढ़ते या संसारी चर्चा करते करते सो रहे, तो अमृत वेला शक्तिशाली नहीं हो सकता है। सोने के एक घंटे पहले का समय और रात को उठने के एक घंटे बाद का समय, इसमें भक्ति मार्ग में भी इसका बहुत महत्व है। किस अवस्था में हम सो रहे हैं, हमारा सोना इतना प्रार्थना पूर्ण, इतना योग पूर्ण हो जाए, इतना पवित्र हो जाए ये सोना, जो बिस्तर है उसको भी सकाश दो, ताकि व्यर्थ निगेटिव विकार वाले स्वप्न भी ना आए, हमारी पवित्रता संकल्प में भी खंडित ना हो, स्वप्न में भी खंडित ना हो, इतनी शुद्धि हमारे हृदय में हो। तो सोते सोते ही आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास, और फिर चार धाम की यात्रा करना, और फिर सोना। छोटा सा अभ्यास है परंतु बहुत शक्तिशाली है, सभी को करना है। उसके बाद का समय, उसके बाद का विषय है समय। लास्ट सीजन में बाबा ने समय के बहुत सारे इशारे दिए। कल की अव्यक्त वाणी संडे की, उसमें एक बहुत पावरफुल बात कही है बाबा ने। किसी कर्नाटक के भाई ने मधुबन में आकर शरीर छोड़ा है, वहां पर बाबा ने कहा है कल की मुरली, संकल्प में भी तीन बातें ना आए, कुछ करना था, कुछ बनना था, कुछ रहा हुआ है। इतनी हमारी तैयारी हो। वैसे तो तीनों ही बातें बहुत अच्छी है, परंतु ये संकल्प भी ना आए। बिस्तरा और पेटी, इसका उदाहरण दिया है समेटने की शक्ति, देह, देह के संस्कार, पदार्थ संबंध, संस्कार पदार्थ संबंध, ये सभी समेटे हुए हो। ऐसी हमारी तैयारी है कि अभी अभी बाबा अगर यहां आ जाए और कहे चलो मेरे साथ, तो क्या हमारी तैयारी है कि बहुत सारा कुछ करना है, कमरे में कुछ ठीक करना है, किसी को फोन करना है, व्हाट्सएप में कुछ कुछ डिलीट करना है, किसी को मेल करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ बताना है, किसी को कोई संदेश छोड़ना है। बाबा ने कहा कुछ करना है, ये संकल्प भी ना है, कुछ बनना है, ये संकल्प भी ना है, कुछ रहा हुआ है, ये संकल्प भी ना है। ऐसी एवर रेडी अवस्था हो, ऐसी है, ऐसी तैयारी है। इतना हम समेटे हुए हो कि बस अभी कहां चलो तो चलो, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कोई अकाउंट्स चुप तो नहीं करने हैं, किसी को कुछ बताना नहीं है। इतनी मानसिक तैयारी हो, यही तो पुरुषार्थ है। यहां भाषण देना है, वहां क्लास करानी है, ये क्लास सुनना है, इसको कोर्स कराना है, ये सेंटर चलाना है, यहां सेवा करने जाना है, ये सारे संकल्प भी नहीं। ऐसी हमारी श्रेष्ठ स्थिति हो, क्योंकि समय ही वो आ चुका है, समय ही ऐसा आ चुका है। कितनी बातें हो गई? पांच। एक अंतिम बात, एक तो मिलन, खुशी, पढ़ाई, समय, भाग्य, और एक बात जो बाबा ने मुरली में कही है, वैसी तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु एक बात कौन सी, किसी को याद, या कोई भी ले सकते हैं। हमारे मन में एक बात है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप बताएं, आठ मुरलियों में से कोई भी एक बात जो रिपीट हुई है। परमात्मा प्यार, ये भी ले सकते हैं, इसके विषय में भी बाबा ने बहुत सारी बातें कही है। प्यार के लिए क्या कहा, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाबा, इस तरह की बहुत सारी बातें उसमें तो आई है, परंतु इसके भी अलावा क्या, हमारा युग आ गया, इस पर पूरी एक मुरली थी, हमारा युग आ गया, खुशी के दिन आ गए, सतयुग के लिए बाबा ने कहा था, जिसमें माताओं के लिए भी बाबा ने याद किया था, माताओं को स्पेशल टांग मिली हुई है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकती। पर हमारे मन में जो पॉइंट थी वो था साधन, साधन के लिए बाबा ने कहा है, ज्ञान की रीति से भी देखो तो टू मच में नहीं जाना है। और आज वर्तमान में यदि सबसे बड़ी कोई माया है इस यज्ञ में तो साधन ही है, साधन। जैसे आपको एक उदाहरण देके इस क्लास को पूरा करते हैं, बाबा ने कहा साधनों के अधीन नहीं होना ना, साधन टू मच में नहीं जाना है। इस कलयुग में सारे साधन मिल जाना यह असंभव है, यह भी एक महावाक्य कहीं आया है। एक व्यक्ति होता है, उसको एक बीमारी होती है, बीमारी ऐसी होती है कि वो कहता है जब मैं सोता हूं और मैं स्वप्न देखता हूं तो मेरी जो खटिया है उस खटिया के नीचे बहुत सारे सांप, बिच्छू, बहुत सारे जहरीले प्राणी, अजगर, ये सब मुझे दिखाई देते हैं, क्या करूं। बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाता है, कहीं कोई इलाज नहीं, बहुत सारे मनोचिकित्सकों के पास जाता है, कहीं कोई इलाज नहीं, हरेक उसको कुछ ना कुछ दवाई देते हैं, परंतु वो स्वप्न उसको रोग आ जाता है, इतना वो भयभीत होता है कि जब भी घर से निकलता है तो दुखी और अशांत, और एक ही कारण रहता है, रात को सोता है, स्वप्न देखता है और पीछे ये, नीचे ये सारे प्राणी जो आके ऐसे लगते जैसे उसको डस रहे हैं। उसका जीवन बहुत दुखी हो जाता है, सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, क्या करे, कौन सी दवाई दे इसके लिए। और एक दिन अचानक इतना खुशी खुशी से झूमते हुए अपने कमरे से निकलता है, गाते हुए मुस्कुराते हुए, लोगों को आश्चर्य होता है क्या हुआ, तो वो कहता है मेरा अभी स्वप्न आना ही बंद हो गया है। तो वो कहता है अरे कैसे, क्या ऐसी कौन सी दवाई तुमको मिली? वो कहता है मेरा दूर का एक भाई आ गया था जो कि कारपेंटर था, उसने खटिया के चार जो टांगे थी वही काट दी, तो अभी वो स्वप्न आना ही बंद हो गया। चार हमारी जो इस जीवन की खटिया है वर्तमान समय की, उसमें भी हमें भी बहुत सारे जो विकार रूपी जानवर है, तो ऐसी चार टांगे हैं जो काटनी पड़ेगी। जब तक ये नहीं कटेगी तब तक वो स्वप्न आते रहेंगे और हमें डराते रहेंगे। सबसे पहला मोबाइल, दूसरा टीवी, तीसरा इंटरनेट और चौथा सोशल मीडिया, जिसमें सब कुछ आ जाता है। टीवी, मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया, जितना समय ब्राह्मणों का इन सब चीजों में जाता है आज, उतना सभी का सभी समय, और हरेक को हम नाम बहुत अच्छा देते हैं, सेवा, हमारे पास शब्द बहुत अच्छे हैं जिससे हम आप स्वयं को सुरक्षित करते हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता है क्योंकि हम हर चीज को सेवा का ही नाम देते हैं। टीवी, उसमें क्या कुछ दिखाना चालू रहता है, और एक बार उसकी आदत पड़ गई तो आदत ही पड़ जाती है, हम देखते ही रहते हैं। उस दिन हमें कोई एक भाई कह रहा था, हमने कहा कहाँ जा रहे हैं, तो कह रहा था अशोक भाई की क्लास है। हमने कहा किसकी? वो सीरियल चलता है ना अशोक तो इतना जैसे कि उसके सिवा रह नहीं सकते, वो हो गया कि बस जैसे वो संसार में दिखाते ना, शाम हो गई कि बस मधुशाला की याद आ जाती है। सारे दिन भर संकल्प करता है व्यक्ति कि आज दारू नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, नहीं पीऊंगा, परंतु शाम होते ही कदम अपने आप मधुशाला की ओर चल पड़ते हैं, वैसी ही स्थिति। तो जैसे ही कोई सीरियल में, अगर क्योंकि उसमें एक्साइटमेंट होता है, वो छोड़ते भी ऐसी जगह है कि अगला क्या होने वाला है, उसकी उत्सुकता रहती है। टीवी, मोबाइल बहुत अच्छा साधन है सेवा का, परंतु वही माया ना बन जाए, बस उसी में लगे हुए हैं, उसी में ही समय जा रहा है। मोबाइल, इंटरनेट एक ऐसी चीज है, सेवाएं बहुत हो सकती है उससे, परंतु वो सबसे बड़ा नरक भी है। नाम ही है इंटरनेट, अंतरजाल, उसमें जो व्यक्ति फंस गया वो फंस गया, वो कहां पहुंच जाएगा इस समर्पित जीवन से, कहां नरक में पड़ जाएगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यहां है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी बुद्धि संपूर्ण विकारी बन सकती है उससे। और सोशल नेटवर्क, सस्ता, सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल नेटवर्क पर मिल जाए। सोशल मीडिया में बिकने वाली चीज नहीं है सत्य। सत्य के लिए तपस्या चाहिए, साधना चाहिए। जितने ही सोशल नेटवर्क है, चाहे व्हाट्सएप, चाहे ट्विटर, चाहे ईमेल, या बहुत सारे ऐसे, तो हमारे पास 36 दिन है। 36 दिन के बाद इसी समय, उसी 36वीं शाम को हम बाबा के सामने होंगे। 6-6 दिनों में इन 36 दिनों को विभाजित करें, मिलन, खुशी, भाग्य, साधन, पढ़ाई और समय। और एक चीज करनी है, पिछले सीजन की 8 मुरलियां है वो पहले निकालो कहां है, तो पहले तो ढूंढनी पड़ेगी है कहां, खटिया के नीचे है, अलमारी में है, या है ही नहीं, पता नहीं कहां रख दी थी। अगर पहला काम तो वो करना है आज रात में या कल सुबह, आज भी कर सकते हैं, वो पहले ढूंढो वो कहां है वो मुरलिया। वो ढूंढने के बाद अगर किसी ने अंडरलाइन किए है, कुछ नोट्स बनाए थे उस समय, कुछ पुरुषार्थ किया था उस समय चलने के वो 15 दिन में, उस पुरुषार्थ को याद करो, उसको मनन, उसका स्मरण करो, फिर से स्वयं को, अपने आप को सेट करो कि ये जो 36 दिन है ये हमारे व्यर्थ ना चले जाए। बाबा के सामने जाना है ना, तो चलो अब तक जो हुआ वो हुआ, बीती सो बीती, आज भी कहा है बाबा ने, फुल स्टॉप, नो संकल्प, नो चिंतन, जो हो गया वो हो गया, फुल स्टॉप। आज से लेकर, अब से लेकर तो बाबा के मिलने तक कोई पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता, महानता, कोई जो चीज, कोई हमारी कोई कमी है वो बिल्कुल जा नहीं रही है। सोचो, एक दृढ़ संकल्प करो, 21 दिन का ये संकल्प, 21 दिन का बहुत महत्व है। हम अगर एक ही चीज बार 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 करते रहे तो वह 21 दिन में वो साकार हो जाती है, वो आदत सी बन जाती है। सूडो साइबरनेटिक्स नाम की किताब है, एक बहुत 1960 के दशक में ये रिलीज आई थी, पब्लिश हुई थी। उसमें जो ऑथर है उसका, डॉक्टर मैक्सवेल मार्ट्स, उसने लिखा है। वो पहले सर्जन था, फिर वो साइकोलॉजिस्ट बना। उसने 21 दिन का महत्व बताया। कैसे? उसने बताया कि वो कई लोगों की सर्जरी करता था और फेस चेंज करता था, प्लास्टिक सर्जरी। उसने देखा कि नए फेस को स्वीकार करने को मरीज को 21 दिन लगते हैं, एक। दूसरे, उसने देखा कि कई लोगों की टांग काट दी जाती है, टांग में गैंग्रीन हो गया, सड़ गई, खराब हो गई, तो लोगों को लगता था टांग अभी भी है, फैंटम लिम जिसको कहते हैं, 21 दिन लगता था वो स्वीकार करने को कि टांग अब नहीं है। थर्ड, उसने देखा जब हम नई जगह पर जाते हैं तो 21 दिन लगते हैं वहां पर एडजस्ट होने के लिए। 21 दिन क्यों? पहले 7 दिन उसको समझने में, वो बात को, जैसे कोई आदत है, हमने आदत हमको डालनी है हम अमृत वेले के बाद नहीं सोएंगे, उसको समझने को 7 दिन, अगले 7 दिन उसको थोड़ा थोड़ा अपने अंदर लाने में, उसका अंडरस्टैंडिंग, पहला तो पहचान, फिर अंडरस्टैंडिंग क्या है वो, और अंतिम 7 दिन जो है वो संपूर्ण धारण करने में। फर्स्ट 7 डेज टू अंडरस्टैंड क्या है वो, उसकी संपूर्ण समझ। दूसरे 7 डेज वो अंदर उसके साथ एडजस्ट होने में, उसको पूरा अच्छी रीति से समझ में, और लास्ट 7 डेज संपूर्ण धारण करने में। तो कोई भी चीज लो, हमारे पास तो 36 दिन है, तो हम ऐसे कुछ संकल्प करें और बाबा के सामने जब जाए तो आज की तारीख में जो हमारी स्थिति है उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली स्थिति हमारी हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज का टॉपिक याद रहेगा सभी को, टॉपिक का नाम है 36 डेज - होमवर्क प्लीज। ओम शांति।